हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 7 और 8। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम्। अध्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्था। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे रामा, राम राम हरे हरे।
ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 19, जिसका शीर्षक है शुकदेव गोस्वामी का आगमन। अब तक सूत गोस्वामी ने हमें बताया कि जैसे ही महाराजा परीक्षित घर पर पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे एक महान ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ऐसे दुष्व्यवहार करने की बदली में अवश्य मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अवश्य आना चाहिए, मेरे साथ बहुत बुरा होना चाहिए, मुझे बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, इसका शीघ्रातिशीघ्र मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा यश सब कुछ समाप्त हो जाए और ब्राह्मणों के कोप से मैं भस्म हो जाऊं तो मेरे लिए अधिक, इससे अधिक लाभदायक और कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है कि अभी का भी शीघ्रातिशीघ्र मुझे इस मेरे दुष्परिणाम दुष्कर्म का परिणाम प्राप्त हो ताकि मेरे जो संतान है उसको ना भुगतना पड़े। मैं चाहता हूं कि जितना भी अपराध मैंने किया है उसका दंड मैं स्वयं भोगूं। और वो इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे कि अचानक उनको जो शमीक ऋषि हैं उनका एक संदेश प्राप्त हुआ कि राजन, आपको मेरे पुत्र ने बहुत ही ना समझी मूर्खता के कारण श्राप दे दिया है। अब आपके पास केवल 7 दिन रह गए हैं। अब इन 7 दिनों में आप अपने प्रलोक को, अपने परलोक को सुधारने का, अपने कृष्ण प्राप्ति का जो समाधान कर सकते हैं कीजिए। अब आपके पास समय बहुत कम है, आप अपने इस जीवन को सफल करने के लिए जो करना चाहते हैं शीघ्रातिशीघ्र कीजिए। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने यह सूचना सुनी उसी समय अपना संपूर्ण राज अपने पुत्रों को दिया और वो सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आके बैठ गए। और वहां पर आकर वो सोचने लगे कि ये जल क्योंकि भगवान के श्री चरणों से निकला हुआ है, कृष्णांग रेणु भगवान के चरण कमलों की धूलि और भगवान के अर्पित किए हुए तुलसी दल की इसके अंदर सुगंध है, तो इसके लिए पुनाति लोकानुभयत्र शेषण, ये समस्त लोकों को पवित्र करने वाला है, ईशान भगवान शिवजी को भी पवित्र करने वाला है, संपूर्ण विश्व और विश्व के समस्त जीवों को पवित्र करने वाला है। मैंने भी बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे भी यदि मेरे पाप का क्षमन हो सकता है तो इसी जल के प्रभाव से हो सकता है, तो इसलिए आगे श्रुति कहती है कस्ताम न सेवे तमरिष्यमाण, ऐसा कौन होगा, यानी ऐसा कौन नंबर वन का बेवकूफ होगा, मरिष्यमाणम जो आसन्न मृत्यु वाला, यानी जिसकी मृत्यु होने वाली हो और वो गंगा के जल को सेवन नहीं करेगा, गंगा के जल को प्राप्त करने का अभिलाषी नहीं होगा। तो महाराज परीक्षित जो थे वो जब उन्हें पता चला कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है तो वो गंगा के तट पर आकर बैठ गए। आगे श्लोक नंबर 7 हम पढ़ेंगे जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, इति व्यवचित्य स पांडवीय प्रायोपवेशम प्रतिवेशोपाध्याम दधौ मुकुन्दाङ्ग्रिमनन्य भावो मुनि व्रतो मोक्त समस्त संघा इति व्यवचित्य स पांडवीयः प्रायोपवेशम प्रतिवेशोपाध्याम दधौ मुकुन्दाङ्ग्रिमनन्य भावो मुनि व्रतो मोक्त समस्त संघः इति व्यवचित्य स पांडवीयः। प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपाद्यां दधो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनि व्रतो मोक्त समस्त संग इति व्यवच्छित्य इति मन इस प्रकार से व्यवच्छित्य निश्चय करके उन्होंने निश्चय कर दिया कि मेरा कल्याण अब यहीं पर भगवान का ध्यान करने के अतिरिक्त और किसी वस्तु को के विषय में सोचने के अतिरिक्त यहाँ पर बैठकर जब मैं भगवान का ध्यान करूंगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करूंगा, उसी से मेरा कल्याण होगा। तो उन्होंने और कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सब कुछ त्याग कर वहां पर आके निश्चय के साथ सब पांडवे यह पांडव की योग्य संतान, वो पांडव जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्हीं के वंशज महाराज परीक्षित ने यह निश्चय किया कि मेरा कल्याण भी कृष्ण यहीं पर करेंगे अवश्य। कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई गंगा जी, मेरा अवश्य उन यहाँ पर इनके तट पर मेरा कल्याण होगा। तो वहां पर निश्चय करके बैठे और प्रायोपवेशम प्रतिविष्णुपादम, प्रायो उपवेशम, उपवेश कहते हैं उपवास करना, और प्राय मतलब अब मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, जब खाऊंगा पियूंगा कुछ भी नहीं जब तक मेरी मृत्यु, यानी मृत्यु पर्यंत अनशन उपवास, कि जब तक मेरी मृत्यु आएगी अब मैं संसार के किसी भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पर ही बैठूंगा, निश्चय करके भौतिक समस्त आसक्ति का परित्याग करके अन्न और जल का परित्याग करके यहाँ पर बैठे हैं। प्रायोपवेशम प्रति विष्णुपाद्याम, विष्णुपाद्याम मतलब वह गंगा नदी जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है और पूरे संसार को पावन कर रही है, वहीं उसी के तट पर निश्चय करके बैठ गए और क्या कर रहे थे, दधो मुकुंदांग्रिमनन्य, दधो मतलब त्याग दिया और पूरा का पूरा मुकुंदाग्रि मुकुंद के चरणों के अंदर अपना पूरा मन जो है वो लगा दिया, कृष्ण के चरणों के ऊपर अपना पूरा ध्यान टिका लिया। अनन्य भाव मतलब और उनको कुछ भी उस समय स्मरण नहीं था और कुछ भी याद नहीं कर रहे थे, अविचलित भाव से केवल और केवल भगवान के श्री चरणों के ऊपर अपना ध्यान जमा के रखा था, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण तदीय पद पंकज पंचरांतम, कि कृष्ण के जो चरण कमल है वो कमल के समान है और ये जो मेरा मन है ना वो एक हंस की भांति है। अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी तो मुझे ना कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मृत्यु तो 7 दिन के बाद आएगी, लेकिन अभी मैं अपने चरणों अपने मन को भगवान के चरणों के ऊपर पूरी तरह से अवस्थित कर देता हूँ, क्योंकि प्राणो प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्त्वा। 7 दिन के बाद तो मृत्यु आ जाएगी और मृत्यु के समय कहते हैं कफवात पित्ते, बहुत बहुत पीड़ा होती है, गला रुंध जाता है, कफ हो जाता है और हम बोल नहीं सकते, गले से आवाज नहीं निकलती, करोड़ों बिच्छू एक साथ जिस तरह डंक यदि मारे तो उस समय जितना कष्ट होता है उतना कष्ट मृत्यु के समय होता है। तो स्मरण कुतस्त्व, उस समय कहाँ से हम भगवान को याद कर सकेंगे। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी थोड़ी सी पीड़ा आती है, उस दिन हमसे हमारी साधना भी नहीं होती, कभी सर में थोड़ा दर्द हुआ या बुखार हो गया तो फिर माला उठाने का दिल नहीं करता, हम यही सोचते ना आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, माला नहीं कर पा रही हूँ। जब थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तभी हमारा जप कम्प्लीट नहीं होता, हमारी साधना नहीं होती, हमारा श्रवण नहीं होता,
हम सोच सकते हैं कि उस समय जिस समय मृत्यु आएगी वो तो फाइनल एग्जामिनेशन है ना। अगर फाइनल एग्जामिनेशन में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और वो पेपर नहीं दे पाता है तो क्या होता है? फिर वो सारी मेहनत उसकी जाया हो जाती है क्योंकि वो फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा भले नहीं होता है। भगवान कहते हैं नेहा विक्रमणा अश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि थोड़ी सी भी प्रगति वो भी हमें महाभय से बचा लेती है, लेकिन फिर भी हम तकलीफ जब होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो कोई गारंटी नहीं है कि मुख से भगवान का नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसलिए भक्तों की क्या इच्छा होती है कि आज तो मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आज तो मेरा जप भी अच्छा हो रहा है, आज तो मेरा श्रवण भी हो गया, कृष्णा आज ही यदि अपने पास बुला लो तो अच्छा है। प्राणो प्रयाण समय कफवात तपित्ते, उस समय तो न जाने क्या अवस्था होगी, मेरी मुख से भगवान तुम्हारा नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, स्मरण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी है स्वस्थ हूँ, कर पा रहा हूँ, भक्ति कर पा रहा हूँ, गुरु आज्ञा का पालन कर पा रहा हूँ, नियमों को फॉलो कर पा रहा हूँ, स्मरण कर पा रहा हूँ, महामंत्र को उच्चारण कर पा रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो अभी से ले जाओ। एक भक्त होते थे वृंदावन में, तो वो क्या कहते थे, सुबह को उठते थे तो भगवान को बोलते थे संभव है कि आज मेरा आखिरी दिन हो, लेकिन थोड़ी देर सबर करना, अपने जो यमदूत को बोलते थे अभी नहीं आना, जो मृत्यु है ना उसको बोलते थे कि अभी नहीं आना, अभी मेरी साधना कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा जप कंप्लीट हो जाए, मेरा अध्ययन कंप्लीट हो जाए, मेरी सेवा कंप्लीट हो जाए, तब तक तुम इंतजार करना मेरा, मैं साधना कंप्लीट करके फ्री हो जाओ फिर मुझे लेके चलना। फिर जब सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपनी मंगल आरती करते थे, अपनी जप कंप्लीट करते थे, अपनी पूजा साधना जो करनी होती थी वो करते थे, फिर वापस से मृत्यु को याद करते थे, मृत्यु अब मेरी साधना कंप्लीट हो गई है, अगर ले जाना चाहो तो ले जाओ, भले अब मैं फ्री हूँ। तो महाराजा परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन के बाद मृत्यु आएगी, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी। हो सकता है सुबह हम उठ भी ना सके, है ना, क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलिया चल की मंद लहर सुगंध समीर छिली न छिली, कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली, रटले अरिजीवा कृष्ण को नाम तू अंत समय में हिली न हिली। यहाँ इसलिए भक्तजन बोलते हैं देखो भजन करना है, नाम जब करना है तो आज ही कर लो, अभी ही कर लो, क्योंकि अंत समय में हमारी ये जीवा हिलेगी या नहीं हिलेगी कोई भरोसा नहीं। हमारा शरीर क्षण भंगुर है, हमारा शरीर वो हमारा साथ नहीं देता, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें कथा श्रवण करनी चाहिए ताकि हृदय से भौतिक मलिनता साफ होती जाए और भगवान का प्रेम हृदय के अंदर उत्पन्न होता जाए। और जैसे जैसे हृदय के अंदर भगवत प्रेम उत्पन्न होगा उतना ही हृदय से हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, क्योंकि हम लोग जी रहे हैं ये बात तो सत्य है, पर इससे करोड़ों गुना अधिक सत्य ये है कि हम मर रहे हैं। प्रतिक्षण प्रति वर्ष प्रति श्वास के साथ हम मृत्यु की मुंह में जा रहे हैं। धीरे धीरे जब एक वर्ष समाप्त होता है ना, हम लोग कितना खुश होते हैं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, खुशी की बात है। प्रत्येक क्षण में जीवन समाप्त हो रहा है, जिस दिन हमारी बर्थडे होती है उस दिन एक साल कम हो जाता है। हृदय में दुखी होना चाहिए, एक साल कम हुआ और मैं अभी वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ, आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो वास्तव में एक एक क्षण जो बीत रहा है वो हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है और कब न जाने मृत्यु के क्रूर हाथों में हम दबोच लिए जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित कर रहे हैं, दधो मुकुंदांग्रि मनन्य भावा, अपने मन में केवल मुकुंद के चरणों को स्थापित किया, अनन्य भावा, और कोई सोच नहीं और कोई बात नहीं और कोई मन के अंदर वासना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। मुनि व्रतो मुक्त समस, मुनि व्रतो, अब वो मौन हो गए, अब कुछ किसी से बात बात नहीं करेंगे, मुनि का व्रत धारण कर दिया। अब जो बात, जो राज्य की, जो कुछ करना था वो सब करके आ गए, बस अंतिम समय में वही बात की। उसके बाद अब वो भौतिक विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। मुक्त समस्त संगा, जितनी भी भौतिक आसक्ति थी उस सब को छोड़ कर आ गए हैं गंगा के तट पर। अब न कुछ खाएंगे पिएंगे और न ही कुछ और भौतिक कार्य करेंगे, अब अगर करेंगे तो केवल भगवत कथा का प्रसाद ग्रहण करेंगे और कुछ नहीं। अनुवाद देखिए, इस प्रकार पांडवों की योग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए वह गंगा नदी के तट पर बैठ गया, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। यहाँ साफ बताया, ददो मुकुंदा, मुकुंद कहते हैं मुक्ति देने वाला। हम इस भौतिक जगत में जानते हैं बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, बहुत सारे महान आत्माएं हैं, किसी की भी शरण में जाकर हम कोई भौतिक वस्तु तो प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े देवी देवता हमें भौतिक वस्तुएं तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति यदि कोई दे सकता है तो केवल मुकुंद, मुक्ति का देने वाला केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यदि हमें वापस भौतिक बंधन में फंसना नहीं है, यदि जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो एक ही तरीका है कि हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज कर रहे हैं यहाँ पर। ददो मुकुंदांग्री अनन्य भावा, अनन्य भाव होना चाहिए। भगवान ने कह दिया, अनन्य भाव से यदि मेरी शरण में आओगे, अंतकाले च माम एव मन, सिर्फ मेरे और किसी के नहीं, स्मरण मुक्त्वा कलेवम, यदि मेरे स्मरण के बाद तुम्हारा शरीर छूटेगा, यह प्रयाति समद्भावम नाति नास्तस्त्र संशय, फिर ही तुम्हें मेरा भाव प्राप्त होगा, फिर ही तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यदि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी याद रह गया तो मैं आपकी गारंटी नहीं लेता हूँ। भगवान कहते माम एव, और यहाँ पर परीक्षित महाराज यही कर रहे हैं, ददो मुकुंदांग्री मनन्य भावा, और किसी को स्मरण नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, गंगा का जल वेदों समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा के जल पर बैठे हुए हैं, गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि गंगा का जो जल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के उत्स हैं, यानी विष्णु तत्व भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, स्रोत कृष्ण है, अतएव उनके चरण कमलों की शरण हमें समस्त पापों से उभार सकती है। अब जो भगवान जिनके चरण कमलों से निकले हुए जल का, जिनके चरण कमलों को स्पर्श करने के बाद गंगा का इतना महत्व है कि वो हमें पवित्र कर सकती है, तो उन चरणों की क्या महिमा होगी। ये गंगा का प्रताप नहीं है, गंगा तो पानी है, जिस तरह से हमारे घर में पानी होता है, मिनरल वाटर की बोतल होती है, और गंगा का पानी यदि लेबोरेटरी में जाके चेक कराएंगे तो उसके अंदर भी वही H2O फॉर्मूला ही आएगा,
लेकिन उसका महत्व क्यों है? क्योंकि उसने स्पर्श कर दिया कृष्ण के चरणों को, और जैसे ही उनका स्पर्श, उस जल का स्पर्श भगवान के चरणों से हो गया, तो उसका इतना बड़ा प्रताप हो गया कि वो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। शिव और ब्रह्मा भी उस गंगा की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। जरा सोचें भक्तों, यदि उन्हीं चरण कमलों का स्पर्श हमें प्राप्त हो जाता है, यदि उन्हीं चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो हमारा कल्याण कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, अतएव उनके चरण कमलों की शरण हमें समस्त पापों से उभार सकती है। इसीलिए महाराज परीक्षित अपने पूरे मन को दधो मुकुंदांग्री मनन्य भाव, अनन्य भाव से भगवान के चरण के चरण कमल के ऊपर स्थापित किए हुए। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि हमारा मन भगवान के चरणों में टिक जाएगा ना, तो फिर समस्त पाप क्षय हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण हमें समस्त पापों से उबार सकती है, जिसमें ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किया गया अपराध भी सम्मिलित है। अब राजा ने जीवन में यही अपराध किया था, भगवान के चरण कमलों को स्मरण करेंगे तो ये अपराध भी तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। अतएव महाराजा परीक्षित ने मुकुंद या मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट हमें भगवान का निरंतर स्मरण करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये जो पवित्र नदियां हैं ना, गंगा नदी और यमुना नदी, इनका नाम लेते ही कृष्ण याद आदात। इसलिए हमें सदैव हृदय के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें गंगा और यमुना जी के किनारे पर, तट पर जाकर भगवत सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। हमें ऐसी जगहों पर जाने के लिए हृदय के अंदर सदैव उत्कंठा होनी चाहिए, क्योंकि इन ऐसी जगहों के केवल दर्शन करने से ही, जहाँ पर भगवान ने लीला की है, जहाँ जो भगवान के साथ इनका डायरेक्ट से संबंध है, गंगा और यमुना का भगवान के साथ डायरेक्ट से संबंध है, इसलिए नाम लेते ही भगवान की स्मृति याद आने लगती है। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव ये इच्छा करते हैं कि हम गंगा किनारे पर जाकर भगवत सेवा करें, नाम जप करें, यमुना नदी पे जाके भगवत कथा को श्रवण करें। ये इच्छा हृदय के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव महाराजा परीक्षित ने मुकुंद या मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट पर हमें भगवान का निरंतर स्मरण करने का अवसर प्रदान करते हैं। महाराजा परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। मुनि व्रतो मुक्त समस्त संगा। मुक्ति का मार्ग ये है कि भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से विरक्ति। जब तक किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर हमारी आसक्ति बनी रहेगी, तब तक हम मुक्ति के लायक नहीं बनेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुक्ति का यही मार्ग है। और बहुत ही ध्यान से सुनिए, श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे पाप ना करना। क्योंकि अपराध क्यों होते हैं? भौतिक इच्छा, काम वासना पूरे करने के लिए अपराध होते हैं, लेकिन जब कोई आसक्ति नहीं रही तो फिर अपराध क्यों होंगे? वास्तव में जब हमारा मन भगवान के चरणों में पूरी तरह से स्थित हो जाता है ना, तो हृदय से अपराध की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। फिर जीव जब भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसको पता होता है कि मुझे केवल अपनी ड्यूटीज करनी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति का लेश मात्र भी नहीं होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पाप कर सके। अगर किसी भक्त के द्वारा पाप हो जाता है और वो ये कहता है कि मेरे अपराध का कारण ये भगवान की, मतलब हम भक्त जो यही बोलेंगे ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं भगवत संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कार्य भगवान ने मुझसे करवाया हो। ये 100% अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जहाँ पर आपकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वहां पर भगवत इच्छा नहीं है। भगवत इच्छा वही है जहाँ पर आपकी इंद्रिय तृप्ति शून्य हो जाए। महाराज परीक्षित से यह अपराध हो सक ये हुआ था वो भगवत इच्छा से हुआ था, लेकिन महाराजा परीक्षित ने कभी एक बार भी अपने मन में ये नहीं सोचा कि भगवत इच्छा से होगा। मतलब अगर भगवान की योजना से भी कभी भक्त के द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो वो उसका पूरा का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले रहा है। महाराजा परीक्षित ने खाना पीना सब छोड़ दिया, अनशन व्रत करके गंगा नदी के ऊपर आकर बैठ गए कि भगवान मुझसे अपराध हुआ है। तो भक्त के द्वारा यदि कोई अपराध होता है तो वो यह सदैव सोचता है कि ये मेरी काम वासना ने मुझसे करवाया। महाराज परीक्षित यही सोच रहे थे, मुझे भूख लगी थी, मुझे प्यास लगी थी, जिसके कारण मैंने इतना बड़ा अपराध किया। तो भक्त यदि अपराध उससे कुछ हो जाता है प्रकृति के कारण गुणों के कारण तो उसका जिम्मा वो खुद अपने ऊपर लेता है, लेकिन यदि उससे कुछ पुण्य होता है, यदि उससे कुछ बड़ा कार्य हो जाता है, शुभ कार्य होता है जब, तो फिर उसका पूरा का पूरा क्रेडिट वो भगवान को देता है कि कृष्ण मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं थी, ये तो तुम्हारी कृपा से हुआ, ये शरीर तुमने दिया, मन तुमने दिया, बुद्धि तुमने दी, आत्मा तुम्हारा अंश, तो मैं कहाँ से क्रेडिट ले सकता हूँ। यहाँ से हमें शास्त्र से सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाल जी बता रहे हैं समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे पाप ना करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। जिस समय हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, जिस समय हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, उसी क्षण हमारे समस्त पूर्व पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और हमें उसी समय यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं दोबारा कभी भी पाप नहीं करूंगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां लाई जाती हैं कि मनुष्यों को जाने या अनजाने पाप करना होता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराजा परीक्षित जो मान्य निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना ना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें भी शाप दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि श्राप तो कितना बड़ा श्राप है कि 7 दिन के बाद आप मर जाओ, है ना। कुछ चलो उनसे उनका धन छीनने की बात होती, उनका यश छीनने की बात होती, कुछ और, लेकिन मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के बाद, इतना बड़ा श्राप, और ये श्राप भी उनके लिए वरदान हो गया। क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका कभी भी अहित हो ही नहीं सकता। भगवान कहते भगवत गीता में नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो अच्छा करता है उसके ऊपर कभी भी बुराई हावी नहीं हो सकती। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रित होता है तो उसके ऊपर चाहे कितना ही बड़ा कष्ट हो वही उसके लिए अनुकूल परिस्थिति हो जाती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत मुख्य बात बता रहे हैं कि सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचलित भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। कभी भी पाप को करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन में कभी सोच भी आ जाए ना तो उसी समय भक्त जो है वो अपने आप को धिक्कारने लगता है कि मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा करता हूँ और अपराध का भाव मेरे मन में आया कैसे। तो जानबूझकर कभी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवत इच्छा से जो हो रहा होता है उसी में उसका कल्याण है, जैसे कि महाराजा परीक्षित का। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग के नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होगा, और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई अकस्मात पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर अकस्मात भक्त से कुछ अपराध हो जाता है तो फिर भगवान उसको अवश्य बचा लेंगे, भगवान उसके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, लेकिन भक्त सदैव सावधान रहता है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं होना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम 11.5.42 के श्लोक को यहाँ पर बताते हैं, जिसमें लिखा है स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परिश विकर्म यच्चोत् पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट स्वपादमूलम्। स्वपादमूलम् यानी भक्तों के शरण, कृष्ण के चरण कमल जो है उनको यदि भजत पूजा में लगा होता है, प्रिय सी कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण उस व्यक्ति से बहुत प्रियस्य बहुत प्रेम करते हैं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा, त्यक्ता मतलब त्याग किया हुआ है अन्य भाव, और किसी भी विषय में वो नहीं सोचता है, केवल भगवान के चरण कमलों। हरि परेशा यानी भगवान हरि के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त उसके मन में और कोई भी इच्छा नहीं होती है, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी वासना पूरी करने के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। लेकिन यदि अकस्मात विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्, विकर्म यदि उसके द्वारा कोई पाप कर्म हो जाए, उत्पतितं यानी घटित हो जाए, कथञ्चित् ऐसे ही अकस्मात यदि उसे कोई अपराध हो जाता है तो धुनोति सर्वं रीदि सन्नि, धुनोति भगवान स्वयं आके धो लेते हैं, धुनोति सर्वम वो भगवान सर्वम हृदय सन्निविष्ट जो सब जीवों के हृदय में स्थित हैं, वो भगवान स्वयं ही उस अपराध को विनष्ट कर देते हैं और वही उसके कल्याण का स्रोत बन जाता है। जिस तरह से अपराध हो गया महाराजा परीक्षित से और यहीं से उनकी मुक्ति का मार्ग खुल रहा है, तो भक्त स्वयं तो भगवान के शरण कमलों में टिके हुए होते हैं, उनका हृदय कभी भी स्वइच्छा पूरी करने के लिए अपराध नहीं करता, लेकिन ये तो भगवान की योजना है जो निस्संदेह उनके लिए अनुकूल होती है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब ये समाचार फैल गया कि महाराजा परीक्षित सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं, गंगा जी के तट पर उन्होंने आकर अपना हृदय भगवान के चरण कमलों में स्थित कर दिया है, अब वो भगवान के धाम में जाने का संकल्प किए हैं, तो विश्व के कोने कोने से महान ऋषि उस समय उस जगह पर आने लगे। मतलब ये समाचार इतना तेजी से फैल गया कि उसी दिन जिस दिन महाराजा परीक्षित को, ऐसा नहीं कि अभी कुछ समय के बाद कुछ ऋषि आएंगे, कुछ समय ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं और कितने ऋषि तो महाराजा परीक्षित के आने से पहले ही वहां पर आके बैठ गए थे, डेरा जमा लिया था कि क्योंकि अभी कभी ऐसा हो कि वर्षा हो जाए या फिर हम लोग पहुंच ना सकें और कथा स्टार्ट हो जाए। कहा जाता है कि जिस समय महाराजा परीक्षित ने जन्म लिया था उसी समय से ऋषि गण जो है वो गंगा के तट पर आके बैठना शुरू हो गए थे कि यही वो जगह है जब महाराजा परीक्षित को, क्योंकि ऋषियों को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है तो वो उस कथा को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए कितने साल पहले से आकर जमा होना शुरू हो गए थे। और जैसे कुछ ऋषि जो हैं वो करीब के या कहीं के भी वो दूर के जो कि जल्दी आने में समर्थ होते, मनोगति से वो आगे आ सकते थे, इसलिए जैसे जैसे जिसको पता चल गया कि वो समय आ गया है, वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे कि अभी हमें जाना है कथा सुनने, क्योंकि उनको पता है कि जीव का कल्याण एकमात्र कृष्ण कथा से होने वाला है। वो अपने आश्रम में जो करते होंगे सो करते होंगे, परंतु वास्तविक जो कल्याण है जीव का, कृष्ण के प्रति जो हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होने का साधन है, वो है भगवत कथा। और यदि किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भगवत कथा श्रवण करने को अवसर प्राप्त हो रहा है तो सारे ऋषिवर्ण, सारे ऋषिगण जितने भी, एक एक का नाम गिना के बताएंगे आगे सूत गोस्वामी कि सब ने अपने आश्रमों को ताला लगा दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की कथा को श्रवण करना, और सारे ऋषि यहाँ पर जमा हो रहे हैं, अकेले नहीं सारे शिष्यों को लेकर आ रहे हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्था भिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्त तत्रोपजग्मुर भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्था भिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्त तत्रोपजग्मुर भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्था भिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्त तत्रोपजग्मु। उपजग्मु मतलब वहां पर, तत्र जहां पर महाराज परीक्षित बैठे थे वहीं पर जग्मु पहुंचने लगे। कौन? भुवनम पुनानाम। भुवनम का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड को, पुनानाम यानी पवित्र करने वाले। ऐसे महान ऋषि जिनके आगमन से संसार पूरा भुवन पूरा त्रिलोकी जो है वो पवित्र होने वाला है। भगवान के महानुभावान, भगवान के महान भक्त जो सदैव भगवान की भक्ति करते रहते हैं, कोई फालतू कार्य नहीं करते, ना किसी के विषय में बात करते हैं, ना किसी की निंदा करते, ना किसी खुद के साथ द्वेष करते हैं, उनका कार्य केवल भगवत भक्ति होता है। तो जब वो भगवान के साथ इतना गहरा संबंध उनका होता है कृष्ण चरणों से, तो गंगा तो अपने स्थान पे रहती है, वहां पर तो जाना पड़ता है और उसमें जाकर स्नान करना पड़ता है, तब कहीं जाकर जीव पवित्र होता है। परंतु ये भगवान के शुद्ध भक्त जो कि सदैव भगवान के चरणों के अंदर स्थित होता है जिनका मन, वो तो हर एक जगह पर घूमते रहते हैं और पूरे भुवन को पवित्र करते रहते हैं। महानुभावा पुनः सशिष्या, अभी वो सशिष्या यानी अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आने लगे। तत्र तत्र उपजग्मो, उस जगह पर वो सारे महान ऋषि आने लगे। ऐसा नहीं सोचा कि चलो ठीक है हम जाते कथा सुनने के लिए, शिष्य आश्रम को संभालेंगे। नहीं, आश्रम तो कथा के लिए है, तो अगर कथा कहीं पर प्राप्त हो रही है, कहीं शुद्ध भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने कहा ताला लगा दो सारे आश्रमों को, आप चल रहे हैं कथा श्रवण करने के। वास्तव में यही धर्म है कि जो परिवार का हेड होता है, जो गुरु होता है, जो पिता होता है, उसका कर्तव्य है कि अपने सब ऑर्डिनेट को, अपने जो उनके मातहत हैं, उनको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान करे। यही सबसे बड़ा उपकार है। ऐसा नहीं है आजकल के पिता यही सोचते हैं कि भाई हमने अपने पुत्रों को, अपने संतान को, अपनी बेटियों को खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, घर दे दिया, ये मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं नहीं, ये तो केवल उनके भौतिक शरीर के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो तब है जब हम अपने सबॉर्डिनेट को भगवान की संगति, भगवान के सानिध्य के साथ जोड़ते हैं, उनका संबंध जो भगवान के साथ टूटा हुआ है, जिसके कारण वो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, उस संबंध को जोड़ना जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है। और हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे अंडर में है, जो हम जिनकी सुरक्षा हमारे ऊपर दायित्व है, उनको सबसे ज्यादा अगर कुछ देना है तो भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ना, और संबंध जोड़ने का एक ही तरीका है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। जब भगवान की कथाओं को श्रवण किया जाता है तो भगवान के साथ हृदय के अंदर जो हमारा संबंध टूटा हुआ है, जो प्रेम जो अभी भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर विकसित हो गया है, वो पुनः कृष्ण चरणों की ओर होने लगता है। तो सारे ऋषिगण क्या कर रहे हैं, अपने सारे शिष्यों को लेकर गंगा के तट पर जमा हो रहे हैं ताकि वो भगवत कथा श्रवण कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि महाराजा परीक्षित अभी यही करेंगे। महाराजा परीक्षित जब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए हैं तो अवश्य यहाँ पर कृष्ण कथा होने वाली है, क्योंकि महाराजा परीक्षित ने निश्चय किया है कि वो भगवत धाम जाने का संकल्प किया है, यहाँ पर आकर बैठे हैं। और भगवत धाम जाने के लिए एक ही उपाय है कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगे, और मन कृष्ण के चरणों में तभी लगेगा जब हम कृष्ण की कथा को श्रवण करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रायेण तीर्था अभिगमापदेश, प्रायेण प्राय तीर्था यानी तीर्थ स्थान, अभिगम यात्रा उपदेश है, वो तो बहाना था। ऐसा कोई सोच सकता है कि ऋषिगण तो वैसे भी आते रहते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो वैसे ही आ गए होंगे और कथा हो रही होगी तो बैठने, लेकिन नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है तीर्थ यात्रा करने की, क्योंकि स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, ये तो वो संत हैं जो स्वयं तीर्थों को पवित्र कर देते हैं, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले ये संत होते हैं। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः, ये भक्त जो हैं भगवान के चरणों के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीर्थ तो स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब ऐसे संत आकर हमारे अंदर स्नान करें। वास्तव में भक्तों, गंगा नदी संसार में आना नहीं चाह रही थी, उसके दो कारण थे। पहला तो वो सोच रही थी कि क्योंकि मेरा वेग बहुत प्रचंड है, तो इतना प्रचंड वेग पृथ्वी क्योंकि बहुत कोमल है वो सहन नहीं कर सकेगी, और पृथ्वी फट जाएगी और मैं पाताल के अंदर चली जाऊंगी। ब्रह्मलोक से मेरा मुझे ले जाना सहज है, लेकिन क्योंकि जो नदी होती है उसका बहाव हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ब्रह्मलोक से पृथ्वी तक आना तो संभव है, लेकिन ऊपर ले जाना बहुत कठिन है, नदी का बहाव ऊपर नहीं होता है, तो पाताल से तो मुझे कभी भी वापस नहीं लेकर आया जा सकता, इसलिए कौन है ऐसा जो मेरा वेग स्वीकार करेगा। तो मैं अगर डायरेक्ट से पृथ्वी पर जाऊंगी तो फिर मेरा वेग जो है पृथ्वी स्वीकार नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ जी ने बहुत तपस्या की और कहा शिव जी को कि आप महावैष्णव हैं, आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, आप कृपया गंगा जी का वेग स्वीकार कीजिए, उसके वेग को धारण कीजिए। महादेव शिव को, शिव जो है वो इसको अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि ये गंगा कृष्ण के चरणों के ऊपर स्पर्श की हुई है, कृष्ण के चरणों की रज है इसके अंदर, तो गंगा का यदि किसी ने आदर किया है, सबसे महान आदर, तो वो शिव जी ने किया। उस गंगा को जो भगवान के चरणों को स्पर्श करके आई, उसको आजीवन अपने सिर पर धारण किया। तो गंगा का वेग धारण करने के लिए तो शिवजी एग्री हो गए, लेकिन फिर भी गंगा नदी यहाँ भौतिक जगत में आने की इच्छा नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं संसार में जाऊंगी सारे पाप भी आएंगे, मेरे अंदर स्नान करेंगे और अपने पाप मेरे अंदर डालते जाएंगे, इससे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, फिर मैं कैसे पवित्र होंगी, मुझे पवित्र करने का साधन क्या है। तब भगवान विष्णु ने कहते हैं कि आप चिंता न कीजिए देवी, आपके पास जब मेरे भक्त आएंगे, जब साधुगण आएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त जब आपके अंदर स्नान करेंगे, तो वो आपको भी पवित्र करके आएंगे, और मैं समस्त भक्तों के हृदय के अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न कर दूंगा, क्योंकि आप मेरे चरणों से निकली हो तो भक्तों की अभिलाषा रहेगी आपके अंदर स्नान करने की, और जब वे आएंगे तो अवश्य आपके अंदर जो भी अपराधियों के अपराध होंगे वो सब पवित्र, क्योंकि गंगारा परश होइए। पश्यति पावन दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा कौन। गंगा को तो स्नान करने के बाद ही हम पवित्र हो सकते हैं, लेकिन भक्त जो भगवान के होते हैं, शुद्ध भक्तों का केवल दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। तो ये जो भक्तगण हैं, उनकी स्पर्श से, उनके आगमन से स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, वो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उन भक्तों का, उन महानुभावों का आने का कारण केवल और केवल भगवत कथा को श्रवण करना है। अनुवाद देखिए। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब महाराजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह विचार, यह समाचार चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत ही मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराजा परीक्षित से भेंट करने के लिए आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। हाँ, सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से भोजन होते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि भोजन तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति में से उन स्थानों को पवित्र करते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराजा परीक्षित से भेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। तो यहाँ पर जहाँ महाराजा परीक्षित अभी बैठे हैं और सारे ऋषिगण जमा हुए हैं, यहीं पर हमारी भागवत कथा स्टार्ट होने वाली है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस भागवत कथा के प्रारंभ के निकट जा रहे हैं। तो कौन कौन आए और कौन कौन से ऋषियों का क्या क्या प्रभाव है, वो हम कल पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।